ओम शांति। हम आदरणीय सुभाष भाई जी का बहुत बहुत दिल से सभी वेलकम करते हैं आज के सत्र में। सुभाष भाई जी का ये 35 साल का पांडव भवन से लेकर ज्ञान सरोवर का ये ईश्वरी सेवा का ये पूरा जो यात्रा उनकी जो रही है, उसमें हमने देखा कि दादियों के अंग संग उनको रहने का सौभाग्य तो मिला ही, सभी महारथी भाइयों के साथ भी रहकर जानने और सीखने का, और कैसे उन्होंने अपने व्यक्तित्व का विकास किया वो हमने बहुत कुछ तो अपनी आंखों से देखा भी है कि एक छोटी उम्र में 16 साल 17 साल की उम्र में ज्ञान में आना, फिर इस तरह से अपने पुरुषार्थ के द्वारा और सेवा के द्वारा लगन के द्वारा आगे बढ़ते जाना, और आज भी मैं इनको देखता हूँ भाई जी को कि कैसे वो पढ़ने की और लिखने की लगन। मैं कई बार हंसी में कहता हूँ कि लेखन और अध्ययन का तो सेवा ओम शांति मीडिया के आधार पे हमारी है, पर आप उस दिशा में माना एक एक, जैसे बड़ी दादी के लिए 100 टॉपिक्स, अलग अलग संस्मरण 100, सारी स्मृति से कैसे लिखना उसको, तो ये लगन पढ़ाई की, ये स्वच्छ बुद्धि की निशानी होती है लगातार सीखना। और आज हम उनसे ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, आदरणीय जगदीश चंद हसीजा जी। कितने लोगों ने देखा जगदीश भाई जी को आप लोगों में से? बिल्कुल, देखिए सुभाष भाई, ये बहुत सुभाष भाई जी को ये जो संकल्प आया बिल्कुल सही आया, क्योंकि यदि यही आदि रत्न हैं जिनके द्वारा की हुई सेवाओं और पुरुषार्थ से आज हम सभी जो बैठ के ये मक्खन खा रहे हैं जैसे कहते हैं ना। जगदीश भाई जी वो हस्ती थे जिन्हें भगवान संजय की उपाधि देते थे, गणेश की उपाधि देते थे। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का समस्त साहित्य, लगभग 200 पुस्तकें उनके द्वारा ही लिखी गई हैं, और प्रथम स्पोक पर्सन ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्य प्रवक्ता। माना कहीं पे भी बाबा ने उन्हें ये कहा था कि जहां भी कुछ भी कार्यक्रम होते थे सेवाओं के आरंभ में, तो मुख्य वक्ता के रूप में जगदीश भाई जी को ही बाबा ने जैसे अपॉइंट किया हुआ था। बाबा के दिल पर चढ़े हुए थे जगदीश भाई जी, और उनका थोड़ा सा पूर्व का हम देखें तो वो, आप सोचिए, जगदीश भाई जी ज्ञान से आने से पहले प्रिंसिपल थे बीएड कॉलेज में, जहां टीचर्स तैयार होते हैं वहां के प्रिंसिपल वार्डन। माना ऐसी बुद्धि उनकी थी लौकिक में भी, वेद शास्त्र आर्य समाज, तो उनको कैसे बाबा ने टच किया। उनसे कोई पूछते हैं आपने इन्हें ब्रह्मा बाबा और मम्मा के रूप में कैसे स्वीकार किया, बोले बस यहां से आवाज आई कि ये मेरे हैं, ये मैं इनका हूं, ये दिल से मेरी मुझे आवाज आई और मैं इनका बन गया। तो जगदीश भाई जी को बाबा ने कैसे वरदान दिए वो सुभाष भाई जी से हम सुनेंगे, कि जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा ना कि आज्ञाकारी बच्चे को आज्ञा पालन के रिटर्न में बाबा विल पावर वरदान और वर्षे के रूप में। तो जगदीश भाई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इस बात के कि कैसे उन्होंने आते ही बाबा की पहली आज्ञा को पालन करके भोलेनाथ से वरदान ले लिया पूरा। और एक बात और महत्वपूर्ण थी जगदीश भाई जी की, शुरू में ये यज्ञ सत्संग और ईश्वरी विश्वविद्यालय कहा जाता था, लेकिन ऑफिशियली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ये इनके द्वारा ही, जगदीश भाई के प्रयासों द्वारा ही, गवर्नमेंट के द्वारा ये ईश्वरी विश्वविद्यालय जो प्रूफ हुआ वो जगदीश भाई जी के द्वारा ही उनका स्वरूप, नहीं तो केवल कहा एक सत्संग के रूप में भाव था, और जो राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन वगैरह ये सब उनके द्वारा ही। और यज्ञ की जो 1952 में तो जगदीश भाई का आना हुआ, तो उस समय मैगजीन जो निकलती थी पहली, आज ज्ञानामृत उसका नाम है, पहले त्रिमूर्ति थी, त्रिमूर्ति शब्द, तो उसका पूरा मुख्य संपादक ही वही लिखते थे, इवन ज्ञानामृत के सारे आर्टिकल वही लिखते थे, और बाद में दादियों का नाम डाल देते थे, अलग अलग भाइयों का नाम, पूरी मैगजीन खुद लिख लेते थे। तो ऐसी बुद्धि वाले जगदीश भाई जी जिन्होंने पूरे यज्ञ का स्वरूप ही बदला जिनके द्वारा, तो आज हम उनके बारे में जानेंगे सुभाष भाई जी से। तो मैं भाई साहब से कहूंगा कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जगदीश भाई से आपकी मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, और आपकी नजर में क्या है जगदीश भाई जी का स्वरूप।
थैंक यू गोविंद भाई। मुझे याद है 1985 ओम शांति भवन में प्रकाश मणि दादी जी मुरली सुना रहे थे, और मुरली के बीच में ही आया जैसे कभी दीदी का नाम आता है, कभी मनोहर दादी का, जैसे जगदीश भाई जी का, कि जगदीश बच्चा सेवा बहुत अच्छा करता है। तो हम मुरली सुन रहे थे तो मेरे माइंड में वो बात घूमने लगी, और उसी दिनों में जगदीश भाई एक दो दिन पहले ही दिल्ली से आए थे, तो मैं सर्च करना शुरू किया है कि जगदीश भाई से कैसे मिल सकते, कैसे मिल सकते।
तो उस समय आप कहाँ थे?
मैं पांडव वन में था। मैं सेवा में था, 83 से तो शुरू किया, तो सेवाधारी के रूप में ही था मैं। तो मैंने कोशिश किया, तो वो जो हमारा पांडवन के पीछे साइड में सुदर्शन भवन है, उसके बीच में एक बाल भवन है, वहाँ वो एकांत में रहते थे, लिखते पढ़ते थे। तो कई लोगों से पूछताछ करते 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 डरते डरते वहां पहुंच गया मैं। जैसे वहां पहुंच गया तो लिखने में व्यस्त थे, लिख रहे थे, तो मैं जाके सामने खड़ा हो गया, तो उनको आभास हुआ कि कोई आया है करके, लेकिन वो ऐसे लिख रहे थे। और फिर एक हाथ से उन्होंने ऐसे किया, मतलब एक कुर्सी थी, बैठ जाओ करके, तो मैं बैठ गया और उनको निहारता रहा, क्योंकि अंदर अंदर तो वो बातें आ रही थी कि यही वो जगदीश भाई जिसको गणेश जी कहते थे, जितने सारे लिटरेचर लिखा है, बाबा इनको मुरली में याद करते हैं। तो ये बातें अंदर अंदर में दिमाग दौड़ रहा था उसके प्रति। तो जैसे उनका वो पैराग्राफ पूरा हो गया तो उन्होंने मेरे तरफ देखा, बोला कुछ काम है? तो मैंने कहा काम तो कुछ नहीं, बस आपको मिलने का दिल था इसलिए आ गया, आज बाबा ने आपको मुरली में याद किया। अच्छा, कुछ काम नहीं है, मिलने के लिए आए हो? अच्छा, बैठो बैठो। फिर और उन्होंने दो मिनट फिर वो अपना वो पैराग्राफ लिख के पूरा करके ऐसा बंद करके, अच्छा फिर बोला कैसे हो, कहाँ से? तो मैंने कहा मैं तो सतारा से आया हूँ। और मैंने कहा सेवा कहाँ करते? मैंने कहा रोटी डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा कि कितनी अच्छी बात है, हाथ से काम करो और बुद्ध से बाबा को याद करो। पहले तो हमें ऐसा लगता था क्या रोटी पकानी है, क्या सेवा ऐसे, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि कितनी अच्छी बात है, और वो उससे मेरे एकदम एक चेंज हो गया माइंड में, नहीं बहुत अच्छी बात है कि देखो सचमुच हमारा माइंड फ्री होता है। तो दो तीन बातें करते, फिर कहां से आया कैसे आया, उसके बाद उन्होंने खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया। फिर उन्होंने मेरा एकदम ऐसे भाकी पहन लिया, गले लगा दिया। मैं तो बहुत खुश हो गया कि जैसे नहीं कि बाबा मुझे, जैसे नहीं भावना तो थी ही। और फिर एक डब्बा था उसमें से एक पेड़ा था मुंह में डाल दिया, और फिर बोला कि जब भी याद आया ना कभी भी आना मिलने के लिए, क्योंकि मैं तो कुछ काम से या कुछ गए नहीं, तो जस्ट मिलने के, तो जब भी मन करे आ जाना। तो मैं वहां से सुदर्शन गेट के बाहर निकला और वो रोड से बाबा के पहाड़ी पे जा रहा था। तो रास्ते में निर्भय भाई वॉकिंग कर रहे थे, तो निर्भय भाई ने काके कहाँ गए थे? तो मैं तो एकदम भावुक होता ना, एकदम उनके मेरा चेहरा देखने लायक था, और कुछ तो हुआ ही करके। तो मैंने कहा जगदीश भाई जी से मिल के आया हूँ। तो समझ गया, अच्छा ठीक। फिर मैं तो वो जो स्थिति थी, वो जो मेरे को जो उन्होंने प्यार दिया, स्नेह किया, और वो करीब करीब एक मास नशा रहा हो, एक मास तक, कि जैसे कि धरती पे नहीं है, तो जैसे ने बाप समान बोलते कि वो बाप समान, वो मुझे उस समय अनुभव हुआ कि सचमुच जगदीश भाई जी ने कैसे अपने आप को बनाया, अपना जीवन बनाया, अपना श्रेष्ठता कैसे, और कैसे अपने जीवन से औरों को कैसे ज्ञान दिया, भाषणा दिया, वो मैंने पहली मीटिंग में वो अनुभव किया।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सुभाष भाई जी जैसे कहते हैं ना कि जो जितना महान व्यक्तित्व होता है वो उतना निरहंकारी होता है। कहते हैं अगर फलों से लदा हुआ है वृक्ष तो वो झुका हुआ होता है। तो जगदीश भाई जी की निर्माणता बहुत, उनमें निरहंकारिता हमने सुनी है, आपने किस रूप से उनसे वो उनके जीवन में देखा?
उनके अंदर निर्माणता, मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। मुझे सौभाग्य मिला कि उनको भोजन खिलाने की सेवा मुझे वहाँ पांडव वन में, जब भी वो आते थे तो भोली दादी कहती थी जगदीश भाई आ रहे हैं, जगदीश भाई ध्यान रखना, ऐसे करते थे। तो हम उनका तो कोई खास ध्यान नहीं रखना पड़ता था, लेकिन वो है ना एकांत में बैठ के खाना खाते थे। मुझे याद है भाई साहब खाना पे बैठे थे ऐसे, और इतने में एक बहन आई अमेरिका की, भाई साहब ओम शांति, बोले ओम शांति। फिर वो अपना समाचार सुनाने शुरू किया, वो दो तीन मिनट लग गया, तो जगदीश भाई साहब ने कहा कि बहन जी अभी मैं भोजन कर लूं? हाँ करो करो करो, क्योंकि उनका नियम था कि जब भोजन शुरू करेंगे ना तो किसी से बात नहीं करते थे, और जो भोजन लिया वो उतना ही, दोबारा दूसरी चीज नहीं लेंगे, वो उतना पूरा करेंगे। फिर वो भोजन करने तक एकदम जैसे कि बाबा के साथ भोजन जैसे वो अनुभव, तो हम लोग देखते रहते थे। हम दोबारा जाने का एक दो बार पहले देख गया, देते ही नहीं तो हमने छोड़ी दिया जाना, लेकिन जितना उनका लेने का था उतना पहले से हम लोग तैयार करके रख देते थे। और मैंने ये देखा कि जब उनका भोजन पूरा होता था, भोजन पूरा होता था तो आते थे काउंटर पे और बहुत रिस्पेक्ट से, थैंक यू, बहुत अच्छा भोजन था, मतलब भोजन के प्रति उनका बहुत रिस्पेक्ट प्यार था, कि सिंपल भोजन होता था लेकिन भोजन के लिए वो लोग बहुत रिस्पेक्ट देते थे और सबको धन्यवाद करके दे जाते थे। कि मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये भी सीखने की बात है कि ब्रह्मा भोजन के प्रति कितना प्यार है, ये सीखने को मिला मुझे।
जैसे भोजन उन्होंने मान लो शुरू कर दिया, फिर कोई अच्छी सब्जी भी आ गई तो वो नहीं लेते थे, क्योंकि वो भोग लगा लिया बाबा को मैंने जितना,
उन्होंने एक बार भोग लगा दिया तो एडिशन कुछ नहीं करते थे।
और जगदीश भाई जैसे हमारा ये ग्रुप भी है भट्टी का, सब समय के पाबंद है, जैसे हम 9:30 बोलते हैं तो 5 मिनट पहले आ जाते हैं, तो ऐसे ही जगदीश भाई भी समय के बहुत पाबंद थे। जैसे
एक बार क्या हुआ, भाई साहब दिल्ली से आए, और दिल्ली से आए तो जैसे आए थे प्रकाशमणि दादी जी और जगदीश भाई दोनों खड़े थे, तो प्रकाशमणि दादी जी ने कहा जगदीश भाई हमारे पांडवों को कब मिलोगे, आज रात को 9 से 10 क्लास कराओगे? तो जी दादी बोले, क्योंकि दादी का तो बहुत रिस्पेक्ट देते थे, बहुत प्यार था, तो दादी को बोला जी दादी। तो उन्होंने बराबर वो हिस्ट्री हॉल में ये क्लास होता था रात का 9 से 10, तो सुदर्शन बाल भवन से वो आए फटाफट, 9 बजे संदल पे बैठ गए, वो साउंड वाले वहां थे, जैसे वीडियो वाले इधर है साउंड वाले उधर थे, उन्होंने गीत बजाया, गीत पूरा हुआ और मैदान खाली, हॉल में कोई भी नहीं था, और वो उठ के चले गए अपना कारोबार करने लगे। क्या हुआ, मधुबन में सब आवाज हो गई, अरे जगदीश भाई आया, क्लास में कोई नहीं था, जगदीश भाई आया, क्लास में कोई नहीं था। दादी जी को भी अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा कि मैंने इतना रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने अपना टाइम निकाल के वो चले गए और अपना लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जब भी जगदीश भाई जी का क्लास रखते थे मधुबन निवासी, 5 मिनट पहले ही पहुंच जाते थे। तो ये उन्होंने सीख दी, देखो एक तो दादी ने जो बोला उसके आज्ञा का पालन किया, और दूसरा हम सब मधुबन निवासियों को शिक्षा दी कि देखो कोई भी प्रोग्राम होता है कि समय पे आना चाहिए, समय पे शुरू करना चाहिए, और जो आप स्टेज वाला आया तो स्टेज के पहले, मतलब
स्पीकर है,
स्पीकर के पहले आना चाहिए, वो हमको शिक्षा उन्होंने दी। तो ये उनके अंदर गुण था कि कैसे अपने व्यवहार से सभी को सिखाते थे।
जैसे जगदीश भाई बताते हैं कि पहली बार जब आबू आए 52 में बाबा से मिलने, जब पहली बार उनका आना हुआ तो रात्रि क्लास में वो आए थे, और रात को ही बाबा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखने की बाबत एक सेवा दी थी, जो 4-5 आए थे जगदीश भाई के साथ, पहली बार जगदीश भाई आए थे, जो रात को फिर लाइट बंद हो गई और सुबह जो रिटर्न कर,
ये बात है ब्रिज कोटी की बात है। तो
जी,
क्या
जी,
हुआ था उस समय तो 10 और बस लाइट जली, मतलब बंद होती थी, और जैसे नॉर्मली बाबा ने कहा कि देखो ऐसे ऐसे राष्ट्रपति को एक इनविटेशन लेटर, तो आप तो क्योंकि जगदीश भाई साहब के साथ और 2-4 लोग, कोई मैनेजर था, कोई पढ़ा लिखा था, तो आप लोग पढ़े लिखे लोग एक बना दो, तो सभी ने हाँ बाबा सब ने बोल दिया। अब क्या हुआ, फिर उसके बाद भोजन हुआ, खान पान हुआ, ये हुआ, 10 बजे लाइट बंद हो गई। अब वो बोलते अरे कल सुबह लिख देंगे बाकी, लेकिन जगदीश भाई के अंदर होता है कि अरे ये कोई साधारण थोड़ी, परमात्मा ने भगवान ने आज्ञा दी है भाई तुम लिखो।
अब लाइट तो नहीं थी, पता होगा ना कि लाइट बंद,
लाइट नहीं थी, बोले बाबा बोलेंगे बोलने के लाइट चलेगी हम क्या करें। लेकिन जगदीश भाई ने नहीं, वो क्या क्या अपना पेन और डायरी लेके जो अपने रोड लाइट होती है ना उसके नीचे गए, वहां बैठ के एक बार लिखा, फिर उसको ठीक किया, दो बार लेकर आती, ऐसा उनको सुबह 4 बज गया, सुबह 4 बजे के मेडिटेशन में आके बैठ के रख दिया। फिर सुबह क्लास हुआ, बाबा की मुरली चली, हो गया पूरा। तो वो लोग है ना हंस रहे थे, देखो ये रात भर फालतू में मेहनत कर रहा था, बाबा ने तो पूछा भी नहीं ऐसे करके। तो जब मुरली हुई, नाश्ता हुआ, तो बाबा ने कहा चलो आज बच्चे पिकनिक करने चलते, तो कहीं पहाड़ी पे गए। तो वहां बैठे आराम से बात बीत करते करते, तो अचानक बाबा ने, मतलब ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चे रात को एक काम दिया था, किसने किया? तो वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जगदीश भाई तो चुपचाप शांति से बैठे। तो वो लोग बोलते बाबा इन्होंने किया करके उंगली दिखा, तो बच्चे दिखाओ। दिखाया तो बाबा ने कहा बच्चे आज से तुम इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्य वक्ता भी रहोगे, राइटर भी रहोगे, लेखक भी रहोगे, सब कुछ वरदानों से भरपूर कर दिया। तो ये देखो बाबा की कमाल की, बाबा ने कैसे रत्न को चुना, बाबा जानता था कि यही रत्न है, लेकिन इसको कैसे तराशा और कैसे पहाड़ी पे जा, कोई ऐसी बात ही नहीं, लेकिन बाबा तो जगदीश भाई साहब ने तो साथ में लेके रखा था, तो वो तो दिखाया। तो ये होती बात की आज्ञा का पालन और परमात्मा के प्रति प्यार। ऐसे एक बार की बात है, जब जगदीश भाई जी इधर आए थे तो सब कुछ छोड़ के आए थे समर्पित होने के लिए, भाई अभी मैं मधुबन में रहूंगा क्योंकि 5000 साल के बाद बाबा मिला है, भगवान मिला है, अभी हम कैसे जाएंगे, ये करेंगे, ऐसे सब मन में रह के आए। फिर वो आए मधुबन, 4-5 दिन रहे, फिर बाबा ने कहा बच्चे ये कुछ मैगजीन लिखना है ऐसे ऐसे करके। तो जगदीश भाई जी एकदम ये हो गए, कैसे होगा, मैं कैसे जा सकता हूँ, लेकिन भगवान ने तो आज्ञा दिया। तो ऐसे उलझन में मगे आवज्ञा कैसे किया कर सकते, परमात्मा ने बताया। तो अपना सामान बोरी बिस्तरा बांधा और चले स्टेशन पे। फिर जब अबरो स्टेशन पे गए तो बोला यार छोड़ो, क्या है उस दुनिया में, क्या जाके क्या करना है, चलो वापिस चलते। फिर इतने में ट्रेन आई, सामान रखा, तो ट्रेन तो 10-15 मिनट तो रुकती है ना, तो ट्रेन में रखा, फिर नहीं नहीं चलते, फिर वो वापिस उतारा सामान, फिर बोला नहीं यार चलो वापिस, फिर वापिस रख दिया। ऐसे 3-4 बार उधर स्टेशन पे ही हुआ। फिर इस उलझन में ट्रेन शुरू हो गई दिल्ली, तो दिल्ली में गए तो दिल्ली में भी वही हाल, अरे चलो यही ट्रेन से वापिस चलते, क्या करना। वो कुली आया, बाबूजी की सामान लेके वहां थोड़ा दूर गए, कुली रुको रुको सामान वापिस रख दो, वह फिर वापिस सामान रखा। फिर सोचा क्या, वो कुली बोला तो ठीक तो है ना आपका, बोले तुम्हारा पैसा ले लो ठीक है, लेकिन मेरा सामान वापिस रख दो। तो ऐसे कि भगवान को छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ, भगवान है, ऐसे ऐसे उनके मन में उलझन। फिर बाद में लास्ट में 2-3 बार वो चीजें हुई, फिर लास्ट में नहीं ये तो भगवान की आज्ञा है और मुझे करना है जो बाबा ने बोला। फिर गए अपने रूम में, फिर वो फिर लिखना पढ़ना शुरू हो गया, फिर वो इतने बड़े राइटर बने, 200 से अधिक किताबें लिखी। ये थी जगदीश भाई की मतलब महान।
बाबा जैसे जगदीश भाई को कहते थे कि बच्चे की बुद्धि बहुत लंबी है, माना बुद्धिमान बाबा कहते, ये बहुत वंडर भी है जगदीश भाई का। यदि 50 साल का ये हम उनका जीवन समर्पित जो बाबा के यज्ञ में, माना कोई लीगल कारोबार भी है तो जगदीश भाई सलाह देते थे, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ कुछ कारोबार है, कुछ समाज से, हर बात पूरे विंग्स की सेवाओं की बात कहें, या इवन यज्ञ में जो अकाउंट से संबंधित भी कोई समस्या आई तो खुद सीए न होते हुए भी उनकी राय से ही वो समस्या का हल हुआ, एक वरदान। तो माना जो जगदीश भाई का जो पूरा व्यक्तित्व था वो हर जैसे सब्जेक्ट में उनको महारत हासिल थी, ऐसा हमने देखा। और दादियां जैसे हमने देखा, दादियों के साथ जो उनका एक उनके प्रति जो रेस्पेक्ट था, या दादियों का उनके प्रति जो रेस्पेक्ट था, तो दादियां जगदीश भाई जी को किस नजर से देखते थे?
एक्चुअली जगदीश भाई जी है ना, पूरा नॉलेज था, इसलिए बावल दे 7 फीट लंबी बुद्धि इसके ऐसे बोलते थे। तो ये हर बात का चारों तरफ व्यू देखते थे, कैसे क्या क्या, और इस प्रकार से सब फाइनल, कोई भी चीज अगर फाइनल होती है फाइनल, और फिर जगदीश भाई के पास दादी बताती ऐसे ऐसे, तो अगर जगदीश भाई बोलते नहीं दादी ये ठीक नहीं है तो वो चेंज करती थी दादी। इतना बाबा के मतलब जगदीश भाई जी के ऊपर भरोसा था, क्योंकि ये मेन तो 4 पिलर थे, निर्वय भाई, मृजुमन भाई, अमर रमेश भाई और जगदीश भाई। तो ये पहले कोई भी कारोबार होता तो पहले मीटिंग करते थे, आज जो ज्ञान सरोवर बनाए तो ये किसकी बुद्धि है, प्लानिंग के, ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग होना चाहिए, सबका हॉल होना चाहिए, कैसे, तो पूरा डाटा बना के पूरा इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए, ये जगदीश भाई के माइंड पूरा चलता था इसमें। और जगदीश भाई के मतलब गणेश जी भी बोलते थे, क्यों गणेश जी बोलते थे, क्योंकि जितनी भी यज्ञ की जो बड़ी बड़ी बहनें हैं या कोई प्रॉब्लम होता था तो वो जगदीश भाई जी के पास जाते, चाहे दिल्ली जाते थे, जहां कहीं भी टाइम वहां जाते थे और सारी बात बताते, वो बहुत ध्यान से सुनते थे और फिर एक ही उनको डिसीजन देते थे, ऐसा करेंगे तो आपका ऐसे होगा। तो लेकिन वो चीज वो लोग अपने अंदर समाते थे, लेकिन ऐसा नहीं फलानी बहन ने तुम्हारे लिए तो ऐसा बोला, तुम ऐसे क्यों करे, ऐसा बोला, ऐसा नहीं, वो पूरी बात उनको सुनते थे और सही डिसीजन देते थे, बाबा का सामने, बाबा का श्रीमत को सामने लेते हुए आप इस प्रकार से ऐसे कर रहे। और साथ में मैंने देखा कि वो समय के बहुत पक्के थे, जैसे आपने बताया ना समय, तो हमारे एक दुबई के भाई थे महेंद्र भाई, वो खास मिलने गए थे उनको दिल्ली, उनके सेंटर पे शक्ति नगर में थे उस समय, तो वो रुके थे पांडव भवन, अब दिल्ली का ट्रैफिक तो वो तो निकले थे टाइम पे निकले थे, लेकिन ट्रैफिक तो इतनी थी, तो उनको 10 बजे का टाइमिंग दिया था, तो वो पहुंचे 10:10 पहुंचे, तो जैसे सामने आए तो उनको जगदीश भाई जी ने टोली खिलाई, ओम शांति आपका टाइम पूरा हो गया, क्योंकि उनका दूसरा मीटिंग था। तो उनको वो महेंद्र भाई को इतना लगा कि मैं दुबई से आया, खास टाइम लिया और मैं नहीं मिला, तो बेचारा उलझन मेरा, तो चला भी गया, मिल भी नहीं पाया क्योंकि उनका फ्लाइट था। तो क्या हुआ, 3-4 साल निकल गए ऐसे, लेकिन वो बात उनके माइंड में पड़ी रही थी वो महेंद्र भाई के। तो क्या हुआ, एक दिन पांडव भवन में कोई मीटिंग हो रही थी और जगदीश भाई जी को मतलब सही नहीं लगा, डिसीजन ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे ठीक नहीं, मैं चलता हूं। तो जगदीश भाई बाहर ट्रांसपोर्ट, पांडव भवन के ट्रांसपोर्ट में आए और वो ट्रांसपोर्ट वाले भाई को बोला कि कोई गाड़ी जा रही क्या, तो इतने यज्ञ में पहले संपन्न तो थी नहीं कि गाड़ी ये तुरंत मिल जाए, तो बोला भाई साहब एक भाई जा रहा है, आप किसके टैक्सी जा रहे उसमें जाओगे? हाँ कोई बात नहीं, चले जाऊंगा उसमें। तो वो जो जगदीश भाई तुरंत जाके सीट पे बैठे, पीछे वाले सीट पे बैठ गए, वो भाई गया था बाबा के कमरे में, वो बाबा के कमरे में से आया और आगे वाले सीट पे बैठ गया, गाड़ी चलती गई आगे, गए निकले, अब रोड भी आया तब वो भाई ने ना पीछे देखा, इन्होंने भाई उसको कुछ बोला नहीं, ऐसे करके जब आबू रोड आया कुछ ऐसे, तो महेंद्र भाई ने ऐसे पीछे देखा ऐसे, अरे जगदीश भाई जी आप, ऐसे एकदम उसको लग, क्योंकि उसके माइंड में था कि मेरे को उन्होंने टाइम नहीं दिया मुझे, वो 10 मिनट टाइम मिलना था उनका मिलने का, वो मुझे मिला नहीं। बोला तो बोला भाई जी अभी तो मेरे तो 10 मिनट क्या है, मैं तो अभी 4-5 घंटा आपके साथ रहूंगा। तो उनके अंदर जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, सब कुछ उन्होंने उनको बताया, उसका सॉल्यूशन उन्होंने दिया, क्योंकि यहां से अहमदाबाद तक जाना था उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि देखो भगवान जब देता ना छप्पर फाड़ के सूत सहित देता है, तो सारे के सारे उनके क्वेश्चन पूरा, तो उन्होंने इतना दिल गदगद हो गया कि बाबा ने आज मेरी आश कैसी पूरी करी दी को। तो इस प्रकार समय के पाबंद भी थे, लेकिन जब समय मिलता तो इस प्रकार के उनका वो सॉल्यूशन भी करते थे। ऐसे ये एक बार की बात है, जब हम पांडव भवन गए थे गीता बहन थी उस समय, तो पांडव भवन के आंगन में, तो जगदीश भाई जी गेट से ऐसे आ रहे थे, तो मैंने गीताबेन को, भाई जी को बोलो ना हमारा क्लास करने चलो, ज्ञान स्वरूप क्लास करने चलो। तो जैसे क्रॉस आए, भाई जी आप ज्ञान स्वरूप आओगे क्लास कराने के लिए? तो बोला गीताबेन हमें तो बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। तो बोला ठीक है कल शाम को। तो तुरंत मैंने कहा अच्छा भाई जी आप भोजन उधर ही करना ज्ञान स्वरूप में। तो उन्होंने कहा नहीं भजन करने आएंगे, भोजन तो हम इधर ही करेंगे। मतलब पांडवों ने मतलब ऐसे मजाक भी करते थे, हंसाते भी, बोले इस प्रकार से उनकी कोई भी चीज को लाइट लेते हुए। लेकिन उस समय उन्होंने एक बात बताई थी कि मैंने 100 साल का काम 70 साल में पूरा कर दिया। कितना? 100 साल का काम 70 साल में पूरा कर दिया। तो उनको ये आभास होता था और क्लियर नजर भी आता था कि मुझे अभी ज्यादा समय नहीं रहना है, मैं 2 साल का मेहमान हूं स्पष्ट रूप में। तो क्लास में सब लोग हंस रहे थे ये क्या बोल रहे, क्योंकि ऐसा कुछ मतलब ठीक ठाक थे। तो बोले 2 साल का मेहमान हूं मैं, और मैंने जो कुछ करना सब कर लिया, जितना कोशिश करना और जितना मेहनत करना चाहिए उससे ज्यादा। वो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं 100 साल का काम कम मतलब 70 साल में कर चुका हूं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें वो बताते थे। मुझे याद है जब यहाँ की बात, यहाँ हमारे पास एक कल्चरल विंग की कॉन्फ्रेंस थी, तो कल्चरल विंग में उस समय अनूप जलोटा के पिताजी पुरुषोत्तम जलोटा जी आए थे यहाँ। वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, तो उनको इतना प्रोग्राम आदि देखने का इतना ये नहीं था, तो वॉकिंग कर रहे थे बाहर। और उनका जो गाड़ी चलाने वाला था ना महादेव भाई, वो कल्चरल प्रोग्राम देख रहा था। और हम लोग भोजन खिला के गेस्ट को करीब 9:30 बजे इधर आ रहे थे, तो वो ट्रांसपोर्ट के सामने वो मिले, मुझे पूछ रहे थे अच्छा यहाँ से पांडव भवन कितना किलोमीटर है? मैंने कहा 4-4.5 किलोमीटर है। तो मैं पैदल जा सकता हूँ क्या? मैंने कहा कुछ जानवर बनवर तो नहीं होते? तो मैंने कहा क्यों भाई साहब, मैं अभी बुलाता हूँ गाड़ी। नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं उठाना, उसको कल्चरल प्रोग्राम देखने दो। मतलब अपने ड्राइवर के प्रति भी उतना प्यार कि भाई उसको देखने दो, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। तो मैं तो एकदम हैरान हो गया, कहीं ये पैदल चलना शुरू नहीं कर दे। तो मैं वहां एक दिन कर भाई थे ट्रांसपोर्ट में, उनको बुलाया उनको, तब तक वो भाई भी आया। वो जब गाड़ी में बैठे तो बोला अच्छा रुको थोड़ा रुको भाई साहब, हो तो गया नहीं, खाली गाड़ी थोड़ी लेके जाएंगे। तो जब गाड़ी भरे मतलब 5-7-8 लोग वो गाड़ी में बैठे, उसके बाद वो निकले यहां से। मतलब उनको माइंड में रहता था कि ये सारा मेरा परिवार है, ये मेरे परिवार के लोग है, मेरे सदस्य है, तो मैं अकेला कैसे, उनको भी ले जाऊं ना साथ में। तो कभी भी जगदीश भाई की गाड़ी खाली नहीं होती थी, वो कोई ना कोई उसमें बैठे रहते थे। और कहीं रास्ते में अगर कोई होता था, कोई पैदल भी चला था, गाड़ी हुई इनको भी ले लो। तो ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कई बार हमने देखते हैं बड़े लोग होते, नहीं नहीं उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, उनको अच्छा नहीं लगता है फलाना। लेकिन इनका ये चीज था, मतलब त्याग भावना इतनी उनके अंदर कुट कुट भरी थी। वो शांतिवन इतना बड़ा बना, उन्होंने कहा मुझे यहाँ रूम नहीं चाहिए, मैं अपना प्रोग्राम करके गाड़ी में बैठ के वापिस आ जाऊंगा, यहां तक उनके अंदर वो भावना थी। तो ये चीज मतलब कि छोटे बड़ा कोई भी हो, उसके प्रति बड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड रहता था। उनको रोज एक बहन मुरली सुनाती थी, वहां छोटी बहन थी, लेकिन जैसे कि बाबा मुरली सुना रहे इस प्रकार से वो सुनते थे। तो इस प्रकार से उनका जीवन का बहुत बड़ा मतलब महान विभूति तो थे ही, तो इस प्रकार सबके प्रति उनकी भावना रहती थी।
जगदीश भाई जी के प्रति दादियों का कुछ?
हाँ, दादियों का तो उनका बहुत प्रेम। और मैंने देखा कि कभी भी अगर कोई प्रोग्राम होता था, जैसे कि मुझे याद है एक लास्ट की मतलब जैसे कि उनका तबीयत बहुत खराब था, तो प्रकाश मणिदा मतलब आज्ञा का पालन, जैसे जानकी दादी बोले, जैसे ये लंदन जाना उनका नहीं था बीमारी के समय, लेकिन जानकी दादी ने कहा नहीं आपको चलना है, आपको चलना है, क्योंकि जगदीश भाई को पता है, पता था कि मुझे अभी 2 साल से ज्यादा जीना नहीं है, तो भी दादियों के प्रति रिगार्ड रिस्पेक्ट होने के कारण फिर वो लंदन गए। लेकिन लंदन में भी बैठे नहीं, सारा दिन सेवा करते, सारा दिन सेवा करते। इसलिए कोई भी डिसीजन भी लेना होता, कोई भी काम करना होता, कोई भी बड़ा कार्य होता था, पहले प्रकाशमणि दादी जी जगदीश भाई से बात करती थी फोन पे। हमें याद है उस समय हमारे पास यहाँ छत्रपाल भाई टेलीफोन एक्सचेंज में थे, तो वो लैंडलाइन थी दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ, तो वो उनको फोन लगा के देते थे। तो अभी उन्होंने किसी को प्रकाशमणि दादी जी को पता था छत्रपाल भाई कौन है, लेकिन वो जगदीश भाई को पता नहीं था कौन है करके। लेकिन वो रात को 12 बजे भी अगर कनेक्ट करना है वो करा के देते, इतना मतलब उनका विश्वास था। और कोई भी बात मतलब इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो एक बार आए थे, बोले वो छत्रपाल कहाँ है करके ढूंढ रहे थे। बोले क्यों भाई साहब? नहीं उसको मिलना है, तो उसको कहा, बुलाया, मिलाया। तो मतलब इतना उनका कि छोटा भी कितना भी हो उसके प्रति रिस्पेक्ट, मिलना और उसको धन्यवाद करना, खाना भी खाया उसके प्रति धन्यवाद करना, ऐसे सब दादियों के। और जैसे ज्यादा करके वो गुलजार दादी के साथ रहने का उनका सौभाग्य हुआ, मिले हुआ। तो उस समय जैसे ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ने वाले थे, तो 1-2 दिन पहले वो यहाँ ही थे, मधुबन में थे, लेकिन उनको आभास हुआ जगदीश भाई साहब कि बाबा भी जाने वाले करके। तो बाबा को पता चला कि ये बच्चे को पता है, बाबा ने तुरंत उसको कुछ ना कुछ काम बना के उनको दिल्ली भेज दिया। अब क्या हुआ, जैसे वो दिल्ली पहुंचे तो शक्ति नगर सेंटर में जहां वो रहते थे वहां रात को फोन आया। अब फोन आया तो उठावे नहीं, हर बार तो जगदीश भाई जी फोन उठाते थे, वो फोन ही नहीं उठावे, घन 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 वो बड़ा फोन बजता था। तो फिर गुलजार दादी ने कहा जगदीश भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे? फिर दादी जी फोन उठाने गई, क्योंकि वो सारे मकान के एक ही फोन था, एक ही बीच में, क्योंकि जगदीश भाई जी को पता था कि इस फोन में क्या मैसेज आने वाला है करके, और ऐसा मैसेज मैं नहीं ले सकता हूं। तो फिर गुलजार दादी ने मैसेज लिया, तो दादी जी ने फोन किया, ऐसे ऐसे है बाबा अव्यक्त हो गए करके। तो कितना मतलब क्लियर था उनके प्रति, और दादियों के प्रति इतना रिस्पेक्ट होता था। जैसे गुलजार दादी जी कभी कभी हम लोग खाना खिलाते थे ना, सुनाते थे कि जैसे कि कहीं वीआईपी को मिलने जाना है, वीआईपी को मिलने जाना तो क्या करते थे, पहले तो कोई गाड़ी बेड़ी तो होती नहीं थी, तो बस में जाते थे, तो जाके रोड पे खड़े रहते थे, तो बस आती थी। अब जो बहने होती तो तैयार होने में तो टाइम तो लगता है ना, आते आते आते, तो गुलजार दादी 1-2 कोई भी साथ में आते थे, तो तब तो वो बस के सामने खड़े रहते थे ताकि बस आगे न जाए। फिर बस में सभी बहनों को, फिर गुलजार दादी जी को बिठा के फिर लास्ट में बैठते थे। तो वो तो कभी कभी परेशान होते थे, ये आदमी तो सामने खड़ा रहता है, गाड़ी कैसे लेके जाए हम लोग। तो इस प्रकार दादियों के प्रति इतना रिस्पेक्ट, उनको बस में बिठा के लेके। और जब मिनिस्टर को आदि सब मिलते थे, मिलने के बाद वो मिनिस्टर इतना खुश हो जाता था, क्योंकि पहले तो जगदीश भाई साहब परिचय देता, ये शिव शक्ति है, ये भगवान से दूत है, इतना महिमा करते थे। तो वो मिनिस्टर आदि बहुत खुश हो जाते थे दादियों से मिलके। फिर वो बाहर छोड़ने के लिए आते थे, चलो आपको छोड़ने, तो बोलते आपकी गाड़ी का है, वो थोड़ा दूर खड़ी कर दे, क्योंकि गाड़ी तो थी ही नहीं ना, कार तो होती नहीं थी, तो थोड़ा ट्रैफिक के कारण हमने थोड़ा दूर, तो हम छोड़ने आए, नहीं 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 हम चले जाएंगे। तो इस प्रकार युक्ति युक्त भी चलते थे। तो सब दादियों के प्रति उनका प्यार, जैसे गुलजार दादी की माँ जो है ऑलराउंडर दादी, उनका सब, तो सब दादियों के प्रति उनका अति स्नेह, और दादी का बहुत उनके प्रति प्यार था, भरोसा था, ये हमने हर बार में देखा। एक बार हमारी जो ब्रह्मा बाबा की बहू के रूप में ब्रुज इंदिरा दादी, वो पांडव भवन के आंगन में बैठे थे ऐसे, तो एकदम वो तो एकदम महान आत्मा थी, वो महाराष्ट्र जोन के इंचार्ज, तो ऐसे बैठे थे। तो जैसे जगदीश भाई, रमेश भाई, ब्रिजभवन भाई थे, तो आ रहे थे दादी से मिले, तो जगदीश भाई जी तुरंत उनके पैर पकड़े ऐसे ऐसे एकदम मतलब नमस्कार, मतलब कि ऐसी महानुभूति कहाँ मिलेगी ऐसा करके, जैसे उन्होंने किया, फिर रमेश भाई ने भी फॉलो किया, फिर ब्रिजमोहन भाई ने भी। तो इस प्रकार बहनों के प्रति मतलब बहुत रिगार्ड रखते थे कि इतनी महान हस्ती, क्योंकि उनको पता था कि हम जैसे करें हमें देख दूसरे लोग कर्म करेंगे, जैसा मैं कर्म करूं मुझे देख और करेंगे। तो इस प्रकार उनकी भावना थी। और यहां भी उन्होंने कई लोगों ने शांतिवन में भी कमरा, यहां भी कमरा, वहां भी उनको कुछ नहीं, मुझे बस एक ही है, मैं वहीं से सेवा करूंगा वहीं से। तो ज्यादा पसारा वो नहीं करते थे। और हमें याद है शक्तिनगर में चक्रधारी बहन जी ने कहा था कि उनका क्या था, सिंपल एक खटिया होती थी, खटिया पे एक पट्टा होता था, पट्टी के ऊपर लिखते रहते थे। और जो टेबल वेट होता ना, वो पत्थर, दो चार पत्थर इकट्ठा करते पत्थर रखते थे ताकि पन्ने उड़, क्योंकि एक पन्ना उड़ गया तो उसको ढूंढते ढूंढते उनको टाइम निकल जाता था, कभी हवा चलती थी, कुछ हो जाता था। तो ये इतने अच्छे लिखते थे, अलग अलग पेपरों में जाता था। तो कभी कभी वहां के जो एडिटर है ना, उनको मिलने आते थे। तो भाई उनका ऑफिस कहाँ है, मिलने चलना है, तो वो बहनों को बोला रखकर उस सेवा क्लासरूम है ना वहीं बिठा देना, उधर ही आएंगे। नहीं, उनको नमस्ते भाई साहब, चाय पानी पी लो, वो भाई साहब आपको इधर ही मिलने आएंगे। नहीं नहीं, हम ऑफिस में जाते हैं ना। नहीं नहीं, वो बोलो नहीं, इधर आराम से मिलेंगे, क्योंकि ऑफिस तो था ही नहीं उनका। तो इस प्रकार से युक्तियुक्त एकदम साधारण जीवन, एकदम साधारण जिंदगी उनकी रहती थी। और इस कारण सब सारा यज्ञ दादियों के सारा यज्ञ उनके प्रति प्यार प्रेम करते थे। ऐसे मुझे याद है जब लास्ट में, अभी मतलब कुछ दिन के बाद शरीर छोड़ने वाले इस ऐसे समय प्रकाशमणि दादी जी ने कहा, भैया हमारे मधुबन निवासियों को मिलोगे थोड़ा? तो फिर बोला ठीक है दादी। तो दो लोग उनको पकड़ के, मेडिटेशन हॉल की बात है, दो लोग पकड़ के लेके आए उनको, और स्टेज पे दादी बाजू में बैठी है। तो उन्होंने बताया कि देखो मेरी हालत क्या है, लेकिन मैं दादी की आज्ञा टाल नहीं सकता हूं। दादी ने कहा परिवार से मिलने के लिए, इसलिए मैं आया हूं, लेकिन मेरे दिल में एक बात रहेगी कि मैं शिव बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, मैं रात दिन मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन बाबा को मैं प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, ये आश आप पूरी करना। तो सब दादी जी ने कहा हाँ, हम सभी मिलके सब बाबा, आपकी भी आश, बाबा की भी आश पूरी करेंगे। और दादी ने फिर अपने ऐसे भाव में समा गया, फिर जैसे ना छोटा बच्चे को लेके दादी से फिर वापस गए। तो अंतिम समय तक हमने कहा कि वो सेवा की भावना होती थी। जब वो बीमार थे तो हमारे अर्जुन दादा है ना, उन्होंने शरीर छोड़ा था, मतलब एक आधा साल का डिफरेंस होगा। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो सुखधाम में रहते थे, सुखधाम में रूम था, तो वहां से आए और फिर उनकी जो आरती है ना, उसको कंधा लगाया वहां पांडवन के गेट पे ही। तो सब मधुबनी, भाई साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपने नहीं। फिर उन्होंने फिर दूसरे के हाथ में दिया और ऐसे हाथ जोड़ के खड़े कि सचमुच महान आत्मा है। क्योंकि अर्जुन दादा ना जैसे यहाँ का खिलौना था, उसको मतलब कुछ भी नहीं आता था, मतलब पढ़ा लिखे भी नहीं थे। बाबा ने उनको 100 तक गिनती जो सिखाएगा उसको चांदी का ग्लास मिलेगा, ये अनाउंस किया, लेकिन कोई सिखा नहीं पाया। तो उनको भी मतलब उसके प्रति भी जगदीश भाई का कितना रिगार्ड रिस्पेक्ट कि इन्होंने सारा जीवन अपना यज्ञ में समर्पित किया और इतना सेवाएं की। तो बार बार आपका नमन करके उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ के उनको जैसे विदाई दी। तो ये जब सारा ये दृश्य जब मधुबन निवासी देखे तो उनके अंदर वो भावना निर्माण हुई कि हमें भी सबके प्रति कितना रिगार्ड देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्योंकि भले अर्जुन दादा साधारण थे, लेकिन सेवा बहुत, ये हमारी जो पुरानी बहन उनको पता होगा, जो मुरली जो पोस्ट बुक पोस्ट से जाती थी ना, उसका जो ऊपर का धागा बांधते थे ना, वो अर्जुन दादा बांधते थे और इतना स्पीड में बांधते थे, वो उनकी ड्यूटी होती। तो कोई कोई बोलते थे दादा कल से हम ये ड्यूटी लेंगे, नहीं बाबा ने मुझे ड्यूटी दिया है, बाबा ने मुझे ड्यूटी, ऐसा करके रोना शुरू करते थे कि नहीं मैं नहीं ड्यूटी दूंगा। और कभी कभी वो मक्खन है ना वो निकालते थे, तो कभी कभी उनकी तबीयत खराब होती थी तो उनको बहुत दुख होता कि आज मैं मक्खन निकाल नहीं पा रहा हूं करके, क्योंकि जब वो नहीं निकाल पाते तो फिर भोली दादी हमको बताती थी तो हम देखते थे कितना मेहनत लगता था, वो ये दर्द होता है इसे खींच खींच के तब वो जाके मक्खन निकलता है। तो कैसे कैसे बाबा के बच्चे भोले भाले उनको भी बाबा ने कैसे अपने साथ बना के रखा और उनसे सेवा ली वो हमने देखा। तो जगदीश भाई का तो सबके प्रति प्रेम था ही, लेकिन सारा यज्ञ का दादियों का उनके बहुत बहुत प्रेम रहता था।
जैसे दादी बताती हैं कि कमला नगर जो दिल्ली में पहला कुमार जो समर्पित, या कहते हैं भारत में भी यज्ञ आया शिफ्ट हुआ तो पहले वही थे जो कुमार के रूप में समर्पित होने में। तो दादी बताती ना गर्मी में कैसे वो कंधे पे बर्फ की सिल्ली लेकर फिर शरबत और ठंडा पानी बहनों को पिलाते थे, दो ही कमरे होते थे।
एक्चुअली क्या होता था, ये तो यज्ञ में इतनी मतलब धन का तो संपन्नता तो थी नहीं, तो क्या होता था शुरू में तो जैसे इनका कोर्स फिर शुरू हुआ ना कोर्स, तो ये तो बहुत टाइम पे पंक्चुअल होते थे, तो 4 बजे आ जाते थे, तो 4 बजे आते थे वो शुरू शुरू में कोर्स शुरू हुआ था तब। तो ये दादियां होती थी, दादियां तो रूम छोटा होता था, बाथरूम एक होता, नहाना धोने में टाइम तो लग जाता है ना, तो वो धीरे से देखती थी अरे वो आ गया, डरते क्योंकि क्वेश्चन बहुत करते थे वो लोग, बोले ये आ गया जल्दी तैयार हो जाओ, फिर कोई ना कोई तैयार करके फिर उसको, तो मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं ये इसका कैसे पीछा छूट जाए क्योंकि क्वेश्चन बहुत करते थे। लेकिन जब बाबा के बच्चे बन गए तो बाप रे वो तो पूरा फिदा हो गए, फिर तो 4-4 किलोमीटर से वो बर्फ की शीली सिरे पे, बोल वो जगदीश भाई मजाक में बोलते ये देखो हमारे बाल सारे उड़ गए, इनको बर्फ लाते थे, इनको मतलब बर्फ चाहिए ठंडा पानी पी लेने के लिए पूरा। तो इस प्रकार के उनके अंदर इतने प्रेम इतना भावना होती दादियों के, मतलब उनके लिए तो बहने थे लेकिन हमारे लिए दादियों के प्रति इतनी भावना होती थी, तो जो भी काम जैसे भी फटाफट करना है मुझे करना ही है। एक बार की बात है जब वो बाबा का दिल्ली में आए थे, बाबा दिल्ली आए थे तो उनका क्लास था, तो दूर जाना होता है ना कई किलोमीटर, तो क्या हुआ ट्रेन नहीं था, लोकल ट्रेन या जो ट्रेन उनका नहीं था, तो एक बार क्या हुआ मालगाड़ी जा रही थी, तो मालगाड़ी जा रही थी तो क्या पीछे वाला लास्ट वाला डब्बा होता है
गार्ड
वाला, तो उसमें दौड़ के चढ़ गए, तो गार्ड वाला मारे पीछे जाओ, तो ये बैठ आदमी की गाड़ी नहीं होती है, तो उतरे फिर चढ़े फिर उतरे, तो आखिर वो गार्ड ने ले लिया बिठाया। क्या किससे तेरा प्रेम हो गया यार, कौन ऐसे तुमको मिलने वाली है इतने, तो इतना जानते बाजी करके भी तुम उसको मिलने जा रहे, तो मतलब उनको उसको गार्ड को लगा कि कोई प्रियसी होगी उसको मिलने जा रहे करके, तो लेकिन उनको क्या पता कि भगवान ब्रह्मा बाबा आए हैं और वो मुरली सुनाने वाले हैं, तो वो फिर उसको उसको धीरे धीरे ज्ञान भी दे दिया। लेकिन ऐसे उनकी ऐसी लगन थी, ऐसी लगन थी कि जो काम करना है मना करना ही है। जो लास्ट का मेला दिल्ली में हुआ था बता रहे थे, तबीयत खराब थी और बाबा ने जैसे ना अंधों को भी आईना दिखाना है, तो वो उनका थीम थी कि इतने बड़े बड़े चित्र दिल्ली में, वो प्रगति मैदान या कौन सा मैदान था उसमें बनाया था बड़े बड़े, तो लोग इतना देख, तो खुद सब बोलते थे नहीं भाई साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप नहीं मैं आऊंगा ही, फिर आके फिर उनको कभी कभी उधर ही मैदान में गाड़ी में ही बैठाते थे, फिर वो आते थे चक्कर लगाते, फिर सबको मिलते थे, सबको टोली खिलाते थे, सबको उमंग उत्साह भराते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये मेरा ये अंतिम मेला, इसके बाद मैं कुछ भी मेला या सेवा नहीं कर सकता हूँ, तो वो एक बहुत बड़ी यादगार सेवा उन्होंने की थी। तो इस प्रकार से जगदीश भाई जिस कार्य के लिए लग जाते थे, जैसे कोई किताब बनाना शुरू किया तो किताब बना के ही मतलब पूरा दम लेते थे रात दिन, तो कई बार हमारे मधुबन निवासी या कुछ लोग बोलते थे कि आपके साथ तो भगवान है, आपके साथ बाबा है, सबकी दुआ है, फिर भी आप कैसे बीमार, आपको बाबा मदद नहीं करता क्या, ऐसे क्वेश्चन करते थे, भाई इतना बड़ा भाई है, इतना महान है, तो बाबा क्यों नहीं मदद करते, तो वो बोलते कि इसमें बाबा का दोष नहीं, बाबा ने मुझे समय प्रति समय मुझे इशारा दिया था, कि बच्चे अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, लेकिन मैंने नहीं रखा, मैंने गलती किया, भले मैंने गलती नहीं लेकिन उसमें तो मुझे सुख मिला, आनंद मिला, प्रेम मिला, मुझे तो प्राप्ति प्राप्ति हुई, लेकिन ये शरीर से मैं दोबारा थोड़ी मेहनत कर सकता हूँ, तो इसमें बाबा का कोई दोष नहीं, जो दोष है वो मेरा दोष है। तो बीमारी से भी वो ऊपर उठ गए थे कि नहीं, मुझे लास्ट का उनका ये था जो ग्लोबल हॉस्पिटल में थे, उनके साथ जो भाई था ना, वो बता रहे थे, क्योंकि उनका अंदर दिल था कि शरीर छोड़े तो मधुबन छोड़े, शरीर छूटे तो मधुबन छूटे, तो उनको तो सलाइन आदि लगा के रखा था उधर हॉस्पिटल में। तो उन्होंने रात को ही, मैं समझता 1:30 या 2 बजे वो सब वो निकाल दिया, और चलो तुम आएगा मेरे साथ पैदल, नहीं तो मैं अकेला चला जाऊंगा। तो रात को ही फिर वो सबको एम्बुलेंस ये सब बुला के उनको फिर मधुबन में लाया गया, और फिर उनकी संतुष्टि हुई, अब मैं शरीर छोड़ूंगा तो चलेगा, क्योंकि उनके वो था कि शरीर छूटे तो मधुबन में छूटे, इस प्रकार से। तो ऐसे ही मेरा एक छोटा सा अनुभव था 5 मिनट में, वो
जैसे मैं आ रहा हूँ उसमें, जैसे उन भाई जी के लिटरेचर तो बहुत आपने भी देखे पढ़े, तो हाँ मैं उसी पे आ रहा था कि आपके जीवन में जो पेपर आया उसमें भाई जी के लिटरेचरों से आपको बहुत मदद मिली।
मुझे 2008 में कैंसर हुआ था, तो कैंसर के समय तो लोग तो वैसे ही दुखी हो जाते, तकलीफ में तो तकलीफ तो होती है, लेकिन जब जाना ही है तो खुशी खुशी से जाना ऐसे, क्योंकि उस समय मुझे कई बार एक जगदीश भाई जी अभ्यास कराते थे कि ड्रिल, यहां से परमधाम जाना, परमधाम से वापिस आना, यहां से परमधाम, ऐसे। तो वो सुनते थे, करते कभी नहीं थे, लेकिन जब मैं ये जो कैंसर हुआ तब मैंने हजारों बार इसका प्रैक्टिस किया। लेकिन इसके बीच में उनका मैंने एक संकल्प था शुरू शुरू में कि मैं जगदीश भाई जी के सारा पूरा लिटरेचर पढूं, लेकिन टाइम नहीं मिलता था, कि ये ज्ञान सरस्वती रात दिन सेवाएं कॉन्फ्रेंस फलाना कब, तो वो जो समय था तो मैंने पूरा अपना दिनचर्या बनाई, और फिर जगदीश भाई जी का जितना भी लिटरेचर वन बाय वन किताब पढ़ता गया, तो उसमें बहुत कुछ मुझे फायदा मिला। और उसी समय मैंने कुछ लिखना भी शुरू किया था, कुछ सोचना शुरू किया था, कुछ देखना शुरू किया था, तो और कुछ अनुभव मुझे जो अनुभव हो गए, अनुभूतियां हो गई उस समय हुई थी। मुझे याद है जब मैं मुंबई में था तो हमारी गुलजार दादी जी वहां आए थे मुंबई में हॉस्पिटल में, लेकिन बाजू में एक अकाउंट ऑफिस था उसका उद्घाटन करने, और वहां से चली गई दादी जी नेपेंसी रोड। तो वहां एक भाई ने कहा कि दादी जी आप सुभाष भाई से मिले, तो दादी जी ने नहीं मुझे तो पता ही नहीं, तो दादी जी ने अच्छा उसको फोन लगा, तो भाई ने वो फोन लगा के दिया, और दादी जी जो मेरे से बात किया, दादी जी ने कहा देखो ना हमसे एक भूल हो गई है। मैंने कहा दादी आपसे कौन सी भूल हो गई? मैंने कहा देखो ना मैं हॉस्पिटल में आई और आपको मिली ही नहीं। तो दादी को मैंने कहा दादी आपको तो पता नहीं था ना? नहीं, भूल तो भूल होती है ना। तो दादी ने उस समय कहा कि देखो आपको जल्दी से जल्दी तैयार होके मधुबन सेवा में लग जाना है। तो ये एक मुझे जैसे ना कि वरदान मिला कि मुझे सेवा करना है, मतलब बाबा ने बोला है। तो वो रात भर मुझे है ना नींद नहीं आई थी, पूरी रात में वही जैसे कि बाबा मेरे सामने आ रहा है, बाबा मुझे वरदान दे रहा है, बाबा मुझे कर रहा है, तो ये और दोनों आंखों से ऐसे वो आंसू आ रहे है, और जैसे कि मतलब खुशी के कि दादी इतनी बड़ी महान विभूति, उसने मुझे मेरे साथ बात किया ऐसे। तो मैंने देखा कि उस कैंसर के समय भी हमने कैसे उसको पॉजिटिव रूप देके, उसको हमने कैसे यूज किया। किसी बीमारी आने से वैसे तो एक तो शरीर छोड़ना है, और जब तक है खुश रहना है ना, तो जब तक है खुश रहो, फिर जाना तो सबको ही है थोड़ी, हम कुछ किसी को यहाँ रहना है, तो जाते जाते हमें खुशी, सबको खुशी करके जाना है और खुश रहना है। तो ये चीजें मेरे माइंड में रही, और मुझे याद है जब मधुबन में यहाँ आते थे हम, एक संकल्प क्या था स्टार्टिंग में कि जब पता चला कि कैंसर है तो मैंने ये बात परिवार वालों को बताई नहीं, मतलब ज्यादा ज्यादा डॉक्टर को पता था, मुझे और मेरे साथ भाई का लड़का था, बहन का लड़का संतोष उसको पता था, तो मैंने कहा किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो 3 केमोथेरेपी होने के बाद फिर हम जब यहाँ आए तो यहाँ तो सबको पता चल गया ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन जब पता चला तब हमने कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं अच्छा हूँ। तब जब परिवार के फोन आना शुरू हो गया तो बहुत वो रोना शुरू कर रहे थे कि आप बीमार है या फलाना है, तो मैंने कौन बीमार है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हो गया, मेरे को कुछ नहीं, उनको चुटकुले आदि सुनाता था, तो वो लोग एकदम खुश हो गए कि नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है। तो उनके जो वाइब्रेशन है, जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में बदल के वो जो हमको मदद मिला, वो शक्ति मिली, वो बहुत बड़ी। लेकिन एक छोटा सा अनुभव जो मुझे अपने कमरे में हुआ था वो मैं आपको सुनाता हूँ, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं अपने कमरे में बैठा था और उसी दिन बाबा शांतिवन में आए थे, प्रोग्राम चल रहा था FM रेडियो में, वो आवाज आ रही थी, गीत आ रहे थे और सामने बाबा का ट्रांसलेट था, कमरे में ही था। तो मैं सोफे पे बैठा था, ऐसे सोफे पे बैठ के सुन रहा था ऐसे, और जैसे ही बाबा का अवतरण मतलब होने वाला है, बाबा जैसे सबको दृष्टि दे रहा है और जैसे मुरली शुरू होने वाली, इतने में मेरे को एक थॉट चला। क्या थॉट चला कि बाबा 25,000 लोगों को आप मुरली सुनाओगे और मैं यहाँ अकेला बैठा हूं, ये थॉट चला और मेरे आंखों से ऐसे पानी ऐसे आने लगा, एकदम दड़ दड़ पानी आने लगा। तो इतने में मैंने क्या किया, वो ट्रांसलेट से बाबा धीरे 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 मेरे तरफ आके ऐसे बाजू में बैठते हैं और पूरी मुरली, जो 1.25 घंटा मुरली मुझे जैसे बाबा मुझे सुना रहे थे, और मेरे अंदर इतनी शक्ति इतनी ताकत आ गई और मैं जैसे मुरली पूरी हो तो खड़ा हो गया, खड़ा होकर डाइनिंग में आया। तो कई लोग बोलते अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप यहाँ क्यों आए, यहाँ क्यों आए, लेकिन अब मैं कैसे बताऊं, बाबा ने मुझे मुरली सुनाया, लेकिन शरीर के अंदर इतनी शक्ति ताकत पावर आ गई थी, तो एकदम जैसे कि जैसे उड़ रहा हूं। तो ये अनुभव मैंने किया कि बाबा अगर हम सच्चे दिल से बाबा को पुकारते, जैसे भक्ति मार्ग में सुनते थे कि माताएं बहनें बाबा को बुलाती थी, तो भगवान को बुलाती थी, तो कभी वो आटा पीसने के इसमें भी आता था, कभी मटका बनाने के लिए भी मदद करता था। लेकिन हमने ये प्रैक्टिकल अनुभव किया कि बाबा को बुलाया, बाबा हाजिर, लेकिन आपका बुलाने का तरीका, आपका प्यार, आपका स्नेह उसमें आपको। लेकिन इस समय मैंने देखा कि जब ये अनुभव हो रहे थे, सब कुछ चल रहा था, तो एक दिन मैं ऐसे ही, हमारे शिवानी बहन और सुरेश ओबेरॉय आए थे, तो मैं सुना रहा था, ये अनुभव सुना रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये हमें नहीं सुनाओ, इसको लिखो लिखो और इसको ज्ञानामृत में भेजो। अब मुझे तो इतना लिखना भी नहीं आता था, थोड़ा इधर उधर के लाइनें इकट्ठा करके मैंने गोविंद भाई को दिया, गोविंद भाई इसको थोड़ा ठीक करो। इन्होंने ठीक करके हम ज्ञानामृत भेजा, तो उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने तुरंत हाथों हाथ इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, फिर उसका मराठी गुजराती अलग अलग जहां जहां गया फटाफट ट्रांसलेशन होता गया और सारे तरफ न्यूज फैल गई, सुभाष को कैंसर हो गया था। अभी तक किसी को पता ही नहीं था, अभी सबको पता। अब मैं कमरे में बैठूं और वो बाबा का सीजन चालू, अब कमरे में जाता हूं तब तक वाले आपको कोई मिलने आया, आपको कोई आए तो बड़ा पर प्रॉब्लम हो गया उन्हें, कहे तो कि वो तो जो बाबा को मिलने आते तो सारा दिन ही आते रहते ना, या साइड सीन के हिसाब से। तो लेकिन हमने देखा कि सबकी दुआएं कैसे काम करती है, कितना। और फिर उसके बाद तो फिर ये चैनल वाले जैसे ये TV में, पीस ऑफ माइंड में, इसमें आता गया। जब मैं अमेरिका गया था, अमेरिका तो ऐसे अनुभव सुना रहा था, तो एक वैंकूवर में बैठे थे, तो एक माता ने वो जैसे क्लास पूरा हो ना, एक माता है, पता है आपको किसने बुलाया? मैंने कहा किसने बुलाया? बोलता है मैंने बुलाया। मैंने कहा कैसे? बोलता है मैंने आपका पीस ऑफ माइंड में सुनाया था और तब से मैं बाबा को रोज अमृत वेला बोलती हूँ, ये भाई से मुझे मिलना है, भाई से मुझे मिलना है, आज देखो बाबा ने आपको यहाँ लेके आया है। तो ये देखो माताओं के अंदर की शक्ति पावर, हमने देखा कि कैसे कैसे बाबा को भी अपना बना देती है और बाबा का ऐसे सेवा में लगा देती, कि हमको कनाडा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अचानक बन भी गया, प्लान भी हो गया, वहां चले गए और वो माता की देखो कैसे बाबा ने दिल पूरी कर दी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार से।
थैंक यू सुभाष भाई, कितने सरल शब्दों में अपनेपन से आपने जैसे पूरा साक्षात्कार कराया ना। अब अभी कह सकते जगदीश भाई जी को नहीं देखा आपने, ऐसा कहेंगे क्या? हा? जाना अनुभव किया ना जगदीश भाई क्या हस्ती थे, और उनके द्वारा जो पाया सुभाष भाई आदि जो भरपूर हुए वो सब हमने भी भरपूरता अनुभव की ना। विंग्स के प्रोग्राम जब शुरू हुए तो जो एकेडमी ऑफिस है मोहन सिंघल भाई की, वो उनकी ऑफिस थी ना।
हाँ।
शुरुआत जब,
लेकिन कभी वो आए नहीं ना ऑफिस में,
कभी नहीं आए।
उनके लिए बनाया था ऑफिस, लेकिन
कुर्सी पे महेश भाई ने किसी को बैठने भी नहीं दिया,
बैठने भी नहीं।
वो कुर्सी जो उनकी थी,
वही चीज कभी कभी महेश भाई से हम पूछते हैं कि भाई आप अभी क्या करते हैं उनके ऑफिस में, जो भाई है ना
हार्मनी हाउस में,
तो वो बोलते है कि जगदीश भाई साहब ने इतना मुझे काम दिया है, मेरा पूरा जीवन उसमें निकल जाए, इतना काम देखे गए। मतलब देखो कितना उनकी बुद्धि, सात फीट लंबी बोलते हैं ना, वो पूरी बुद्धि वो जो साथ में था उसको पूरा जीवन, मतलब वो काम कर सकता है, इतना काम देखे गए वो, इसलिए कोई ना कोई किताब आदि निकलते रहते हैं। तो ये उनकी विशेषता थी कि सभी को सेवा भी, काम भी और व्यवस्था भी, और कभी उन्होंने अपने यादगार नहीं रखा कि मेरा कोई स्तंभ बनाओ, मेरा कोई कमरा बनाओ ना कुछ ये करो। तो ऐसे बहुत त्यागी और तपस्वी आत्मा थी, उनका वर्णन जितना करे कम ही है। वो बहुत ही महान और श्रेष्ठ और हम सबके वो शिरोमणि थे, हमारे आदर्श थे,
सेनापति।
ओम शांति।